السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ مبارک مہینہ نصیب کیا، اور تیزی سے یہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف کو جا رہا ہے. اس وقت جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند ہیں، اور جنت سجائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رمضان کے شروع ہونے پہ جنت سے کہ میرے بندوں کے لیے سج جا، تو وہ جو خوبصورت ہے پہلے، سبحان اللہ، جب اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ اور سج جا، تو وہ کتنی خوبصورت ہوتی ہوگی. تو اس وقت آسمانوں کے اوپر جنتوں کے دروازے کھلے ہوئے تاکہ آپ جنت کے لیے اعمال کریں اور جنت کی کمائی کر سکیں، اور جہنم کے بند ہیں تاکہ آپ اپنی مغفرت کروا لیں اور جہنم سے خلاصی کرا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تم میں سے کسی سے قریب ہے، تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب، اور جہنم بھی تم سے قریب ہے، اور کتنی قریب؟ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب. سبحان اللہ، اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جنت میں جانا بھی آسان ہے اگر تم، یعنی اتنا قریب ہے کہ اگر تم ایک نیکی بھی کر لو، کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہو. اور خدا نخواستہ کوئی ایک ہی گناہ ہو جائے، کوئی ایک، تو جہنم تک اینڈ اپ ہو سکتے ہو. انہیں کوئی یہ سوچے کہ بہت سارے گناہ چاہیے ہوں گے جہنم میں جانے کے لیے، تو اور ہم تو اتنے زیادہ تھوڑی گناہ کرتے ہیں. نہیں، جہنم بھی اتنی قریب ہے اور جنت بھی. ہو سکتا ہے کوئی ایک کام اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جیسے کہ ایک آدمی نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس کو معاف کر دیا. ایک عورت نے کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی. تو ہم نہیں جانتے کون سا کوئی ایک کام بھی انسان کو جنت تک پہنچا سکتا ہے یا جہنم تک پہنچا سکتا ہے. یہ تو اس دن پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ گیا. اور بہت سارے لوگ سوچتے رہیں گے کہ او یہ تو بہت آسان کام تھا، یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے. اور کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو بظاہر چھوٹے ہیں اور بظاہر آج کل اتنے کامن ہیں کہ ان کو کچھ ایسا بڑا سمجھا نہیں جاتا، تو لیکن ان کو کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں اینڈ اپ ہو گیا ہوگا. ہم سوچتے ہیں کہ شاید جنت میں جانے کے لیے بھی کوئی بہت بڑا ہی کام چاہیے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو کسی کا کوئی ادا پسند آ جائے، کوئی کام پسند آ جائے. لیکن انسان یہ نہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ او میں تو کوئی بات نہیں، ایک آدھ بھی کام کر لوں گی تو وہاں پہ کافی ہو جائے گا. ہم نہیں جانتے، ہمیں کیا پتا وہ کون سا ایک کام ہو جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، یا کون سی ہماری لاپرواہی ہے یا ہماری غفلت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. تو ایسے جیسے ہاں، بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ ہوگا کہ قیامت کے دن وہ آئیں گے، انہوں نے رات کو بھی قیام کیا ہوگا، دن کو روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیفیں پہنچائی ہوں گی، تو وہ مفلس ہوں گے اس دن. یا اب کسی کا حق مارا ہوگا، وہ یوم التغابن ہے، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی سے زیادتی کی ہوگی، تو اس دن وہ بینکرپٹ ہوں گے، اس دن کچھ بھی نہیں ملے گا. تو لہٰذا اس دنیا میں تو ہمیں یہی کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بیسٹ کریں. پلس اور مائنس ہو رہے ہیں مسلسل، ہر روز ہم اپنی نیکیوں میں ایڈیشن کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کوئی گناہ بھی کر لیتے ہیں، سبٹریکشن بھی ہو رہی ہے. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन कामों को करने जिनसे बड़े बड़े अजर मिल सकते हैं, जो बहुत मुश्किल भी नहीं है, उनको तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक-एक नेकी ढेर बन जाएगा और एक-एक गुनाह भी ढेर बन जाएगा। लिहाजा किसी नेकी को भी ना समझें कि हो इससे क्या फर्क पड़ता है, और किसी गुनाह को भी ना समझें कि इससे क्या फर्क पड़ा। नेकी भी चाहे छोटी है, वो भी जब बहुत सारी नेकियां की जाए तो बहुत बड़ी बन जाती है, और गुनाह भी इसी तरह है। जैसे आजकल के दिनों के अंदर जो कोई इंसान कयाम करता है, मैंने आपको बताया था कि कयामुल लैल करने वाला, रमजान को कयामुल लैल करने वाला, उसके अगर वो ईमान उसके अंदर है और वो चाहता है कि मुझे अल्लाह ताला से सवाब मिले, तो इस पे अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। इसी तरह हमें हदीस में पता चलता है कि एक इंसान अगर फजर और इशा इमाम के साथ पढ़ता है तो उसको पूरी रात के कयाम का सवाब मिल जाता है। तो कयामुल लैल करने वाले का भी ये है कि भाई उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे, और पूरी रात का कयाम तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई करे, पूरी रात जागना, बल्कि खास तौर पे जब हमने रात को जागना हो, अब आगे इंशाल्लाह ताला रातें आ रही हैं जो जागने की रातें हैं, तो अक्सर यही होता है कि उस वक्त सबसे ही ज्यादा नींद आती है, तो इन रातों में भी हमसे नहीं जागा जाता पूरी तरह, और ताक रातें ही मुश्किल से जागते हैं, और कुछ लोग सिर्फ 27वीं की रात जागते हैं, तो बाकी सारा साल में हमने क्या कयामुल लैल करना होगा। हालांकि कयामुल लैल जो है ये इतनी बड़ी एक नेकी है, कयामुल लैल करने की वजह से इंसान अल्लाह ताला के हाँ उसके चुने हुए बंदों में शामिल हो जाता है। देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज हुई थी ना, दिन में नहीं हुई थी, रात में हुई थी, इसीलिए उलमा कहते हैं कि रात में अल्लाह की इबादत करना अल्लाह ताला से करीब कर देता है। रात को जो मैंने आपको ये भी बताया था ना, तहज्जुद का मैंने आपको बताया था यही बात, वो हदीस के अल्लाह ताला हंसता है उसके ऊपर, उससे खुश होता है उस आदमी से, वो जो इनाम की उम्मीद पे और सजा के खौफ से रात को उठा है और अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो गया। तो इंसान अगर कयामुल लैल करता है तो बहुत बड़ी नेकी है, ये स्पेशल लोगों के लिए ये दरवाजा खुलता है रात का, कि उनको अल्लाह ताला तौफीक देता है कि रात को अल्लाह ताला के आगे खड़े हों। हर एक को ये तौफीक ही नहीं मिलती, लोग शादियों के लिए पूरी रातों को जाग लेते हैं, लेकिन कयाम करना पड़े, तहज्जुद पढ़नी पड़े, उसके लिए उनको बहुत मुश्किल लगता है, और रमजान के अलावा भी मुश्किल लगता है। हालांकि आप देखिए, मैंने आपको बताया था पहले भी ये बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में अगर सलामती के साथ दाखिल होना चाहते हो ना, कि आपको जन्नत में जाने में कोई मुश्किल ना हो, इतने आसान आसान काम बताए, एक सलाम को आम करें, सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, यानी कहा करें, और खास तौर पे आप जब सलाम करने लगते हैं किसी से भी तो पहले मुसाफहा किया करें, हाँ हैंडशेक किया करें, हम फौरन गले मिलने की कोशिश करते हैं। मुसाफा करने से क्या होता है, जब दो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में मिलते हैं और मुसाफा करते हैं, तो जुदा होने से पहले अल्लाह ताला उनको माफ कर देता है। तो कितने आसान आसान काम है ना, तो सलामती से जन्नत में दाखिल होना है तो सलाम करो और उसको आम करो, यानी सिर्फ ये नहीं कि खास खास लोगों को सलाम, हम अक्सर अपने घर में घुसते हैं तो सलाम ही नहीं करते क्योंकि ये तो घर वाले ही हैं, तो कोई खास ही जाएंगे तो किसी को सलाम करेंगे, नहीं आप अपने घर वालों को भी सलाम करें। सहाबा का तो ये तरीका था, वो एक दरख्त की ओट से निकलते थे तो फिर सलाम कर लेते थे, नहीं आप किसी से गायब हुए कहीं गए वापस आए फिर सलाम कर लें। अब लोग हैरान होकर देखते हैं ये अभी तो सलाम किया था फिर से सलाम कर रहा, तो वो दोबारा वापस आया तो सलाम कर लिया। मैंने आपको इसके बेनिफिट्स भी बताए थे, और दूसरी बात खाना खिलाना, उसका भी मैंने आपको बताया था, खाना खिलाने का बाला खाने भी उनको मिलेंगे, और तीसरा रिश्तेदारों के साथ जोड़ के रखो और रात की नमाज पढ़ो, ये जन्नत में ले जाने वाला काम है सलामती के साथ। रिश्तेदारों के साथ जोड़ना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतई रहमी करने वाला तो जन्नत में दाखिल हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं जन्नत में दाखिल। तो अगर किसी ने रिश्तेदारों के साथ तोड़ा हुआ है तो ये सोच लें कि फिर वो जन्नत में नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर, तो जन्नत में नहीं जाएगा तो फिर और कहाँ जाएगा, जाहिर है दूसरी जगह तो जहन्नुम ही है सिर्फ, बल्कि पुल सिरात से ही क्रॉस नहीं हो सकेगा, पुल सिरात पे ही ऐसे हुक्स होंगे और वो उसको गिरा लेंगे, जहन्नुम में डाल देंगे जिसने कतई रहमी की होगी, रहम के रिश्ते को तोड़ा होगा। ये रहम का रिश्ता जो रहम जो है ना, ये अल्लाह ताला से फरियाद करेगा उस दिन, अल्लाह ताला इसने मुझे तोड़ा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने इसको पैदा किया था उस वक्त ही अल्लाह ताला ने फरमा दिया था, रहम होता है ना वूम्ब, वूम्ब ऑफ मॉम, तो वूम्ब के जरिए जो आपके रिश्ते आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो आप इसके अंदर बहन भाइयों के रिश्ते हैं, इसके अंदर खाला मामू चचा पुप्पी ये रिश्ते हैं, तो ये नाना नानी दादा दादी ये सब रिश्ते रहम के रिश्ते हैं, तो इनको जो तोड़ने वाला है इसको तो अल्लाह ताला ने उस दिन ही फरमा दिया था कि जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ूंगा, जो तुझे जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा। तो ये रहम के रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है अगर जन्नत में सलामती के साथ जाना है, और अगर ऐसे ही तोड़ तोड़ के ही रहना है तो फिर ठीक है, फिर अगर अगर अफोर्ड कर सकते हैं कि भाई हम सजाएं काट लेंगे लेकिन हमने इनके साथ बात नहीं करनी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे जी, वो हमारे साथ ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, हो सकता है हमारा वहम हो, आपको जोड़ के रखने को कहा गया आप उतनी पे तवज्जो करें, जरूरी नहीं भी हर वक्त आप उनके पास ही बैठे रहें, लेकिन तोड़ नहीं सकते। अब देखें कि ये इसके अंदर जो लास्ट चीज मैंने आपको बताई कि नमाज को पढ़ना रात के वक्त जब लोग सो रहे हैं, तो ये बहुत फजीलत की बात है, इंसान को नींद आ भी रही है वो अपने बिस्तर से उठता है और अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाता है वुजू करने के बाद, तो इसके बहुत सारे फजाइल हैं, और नेक लोग जो होते थे ना पहले के, उन सब का ये तरीका है, सबका कयामुल्लैल तहज्जुद, तो तहज्जुद का वक्त बेस्ट टाइम है अल्लाह ताला के साथ बातचीत करने का। अब हम पूरी रात तो कयाम नहीं कर सकते, वो तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन मैं आपको आज कुछ ऐसे काम बताऊंगी जिनसे आपको पूरी रात इबादत करने का सवाब मिल जाएगा। हालांकि आज छोटा सा ही काम होगा, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, एक तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको याद है वो, किसी को याद हो तो बताए, मैंने आपको बताया था कि बेवाओं और यतीमों, एक रिवायत में मिसकीनों के लिए भी आता है, तो बेवाओं और यतीमों के लिए जो कोशिश करने वाला मेहनत करने वाला है, आप सरअसल ने फरमाया वो ऐसे है जो हर दिन रोजा रखता है और हर रात तो तहज्जुद पढ़ता है इबादत करता है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि जो इमाम के साथ फजर और ईशा पढ़ता है तो उसको भी पूरी रात के कयाम का सवाब मिलता है, और ये सिर्फ रमजान में नहीं है, रमजान के अलावा भी है, तो इसलिए ये ना सोचे कि ये तो अच्छा रमजान खत्म हो गया तो फिर उसके बाद किसने पढ़नी है मस्जिद जाके नमाज। और भी मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ जो हदीस से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुहर से पहले की जो 4 रकात हैं, यानी 4 फर्ज जुहर के पढ़ने से पहले 4 रकात सुन्नत जो आप पढ़ते हैं वो कयामुल लैल की नमाज के बराबर है, और दूसरी रिवायत में है कि जिसने जुहर से पहले 4 रखे थे और जोहर के बाद 4 रकते पढ़े, अल्लाह ताला उसके ऊपर से जहन्नुम को हराम कर देगा। एक मैंने बात क्या बताई कि 4 पहले जो पढ़ते हैं ना तो वो ऐसे ही है जैसे आपने कयामुल लैल करा, इतना बड़ा इसका सवाब है, ये नहीं है मतलब कि अब आप कयाम करेंगे ही नहीं बस इन पे इक्तफा करेंगे, यानी इतना बड़ा सवाब इसका मिलेगा। और एक और बात बताई कि 4 रकत पहले, और हम 2 सुन्नत पढ़ते हैं ना बाद में, 4 सुन्नत भी साबित है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, 4 फर्जों से पहले और 4 फर्जों के बाद, तो जो 4 फर्जों से पहले पढ़े फिर 4 फर्ज पढ़े फिर 4 रकते फर्जों के बाद पढ़ ले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके लिए जहन्नुम की आग हराम है। अल्लाहु अकबर, तो हम कोशिश करें कि हम कम अज कम रमजान में जुहर को थोड़ा अपना ऐसा कर लें कि हम 4 पहले पढ़े फिर 4 फिर 4, ठीक है। इसी तरह जुमे के दिन से भी एक बात है, उस दिन भी आप रात के क़याम का सवाब ले सकते हैं। कैसे? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमे के दिन जिसने गुसल किया और अच्छा गुसल किया और जल्दी पहुंचा, शुरू से खुतबे में शामिल रहा, इमाम के करीब होके बैठा, गौर से खुतबा सुना और खामोश रहा, तो उसके हर कदम के बदले 1 साल के रोजे और रात का कयाम का सवाब मिलेगा। 1 साल के रोजे और रातों के कयाम का सवाब उसको हासिल हो जाएगा, ये एक अमल करने से जुमे के दिन। जुमे के दिन तो जरूर ये कर ही सकते हैं। और कितना बड़ा अजर है, तो थोड़ा पहले से इसका इतमाम हम कर लें। और ये नहीं कि रात से ही गुसल करके रख लिया हुआ जो कल जुमे पे जाना है, इतना करीब करें उतना बेहतर है। और जल्दी पहुंचे, टाइम के टाइम नहीं, और करीब भी बैठे। जब जल्दी जाएंगे तो इमाम के करीब बैठेंगे ना, और खामोश भी रहें, बातें ना करें। और बातें करनी है तो जुमा पढ़ने ना जाया करें फिर ख्वातीन, वो जली भी जाती हैं और फिर बातें करती रहती हैं। इसी तरह अगर एक इंसान आजकल रमजान में तरावी पढ़ता है, और तरावी पढ़ता है और ऐसे पढ़ता है कि जब इमाम नमाज खत्म करता है तब ही वो खत्म करता है, यानी इमाम के साथ पूरी पढ़ता है, उसने जितनी भी पढ़ी, 8 पढ़ी, 10 पढ़ी, 20 पढ़ी, तो उसके लिए पूरी रात के कयाम का अजर मिलता है। सुभान अल्लाह। इसी तरह आज का जो हम ये आज से अमल भी शुरू करेंगे, इसको रात को दो काम करने हैं हमें। रात को दो काम क्या करने हैं जिससे हमें कयामुल लैल का अजर मिल सकता है? एक कि सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ लें, आमना रसूल से शुरू कर लें, और इसको दो आयतें हैं, मुख्तसर सी हैं, कोशिश करें आप इनको याद ही कर लें। इसके बारे में कहा गया कि जो सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ता है उसके लिए ये काफी हो जाती हैं। तो काफी किस चीज से हो जाती है? तो हाफिज इब्ने हजर ने फरमाया कि कयामुल लैल में कुरान पढ़ने से काफी हो जाती है। कयामुल लैल के लिए यानी उठाएगा, कुरान पढ़ेगा, उसमें उससे काफी हो जाती है, और शैतान के मुकाबले में भी काफी हो जाती है, और तमाम आफात से काफी हो जाती है। यानी ये सिर्फ हम कयामुल लैल के लिए नहीं, बल्कि जितनी आफतें शर, और इसीलिए कि हदीस में ये लफ्ज ऐसे ही आ गया कि काफी हो जाती हैं, ये नहीं कहा गया किस चीज से काफी। तो इसलिए उलमा ने कहा कि हर चीज से काफी, यानी रात में उसने उठना था उसे उठा नहीं जाएगा तो उसके सिरे भी काफी हो गई, शैतान के मुकाबले में भी हो गई, तमाम किस्म के शर से भी काफी हो गई, हिफाजत के लिए यानी उसके लिए काफी हो गई, यही काफी है हिफाजत के लिए। तो ये इतनी जरूरी है हमारे लिए रात को पढ़नी, इसका मामूल बनाएं। ये जो बातें हैं ये सिर्फ रमजान के लिए नहीं, इनका मामूल बनाएं कि हमने इनको रमजान के बाद भी जारी रखना है। और अगर आपने याद कर ली तो फिर बहुत आसान रहेगा कि आप इनको पढ़ते रहें हर रात, और थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा लंबी नहीं है। इसी तरह रात को 100 आयात की तिलावत करना, दारमी की रिवायत है कि ऐसे इंसान के लिए भी रात की इबादत का सवाब लिख लिया जाता है। अब 100 आयतें कितनी बनती हैं? 30वां पारा खोलें और जरा देखें 100 आयतें कितनी बनती हैं। उसमें सारी सूरतें, बहुत ही छोटी छोटी सूरतें हैं, आपने खुद इस चीज को देखना है कि मैं कितनी सूरतें पढ़ लूंगी तो मेरी 100 आयात बन जाएंगी। ठीक है, तो 100 आयात बनानी कोई मुश्किल नहीं है, और आप बहुत आसानी के साथ 100 आयात पढ़ के पूरी रात की इबादत का सवाब हासिल कर सकते हैं। तो ये हैं बहुत ही आसान तरीके रात की इबादत के सवाब को पाने के। और वो लोग जो मसलन बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस के हालात ऐसे नहीं होते, छोटे बच्चों की माएँ होती हैं उनसे रात को नहीं उठा जाता, या किसी की जॉब ऐसी होती है वो नहीं कर सकता, तो ये तो आसान आसान काम है ना, ये तो सभी कर सकते हैं। लिहाजा इन कामों की हिर्स रखें और कोशिश करते रहें कि हम इनमें से कोई ना कोई काम जरूर अपनी एक आदत बना लें कि हमने ये करके सोना है। रात को अगर आप ऐसा करके सोएंगे कि आप कुरान करीम की तिलावत करके सोएं, तो फिर तो देखिए और अच्छी बात है, इसलिए क्योंकि अगर मौत आ गई इस हाल में, रात को सोए सोए कोई पता नहीं है, रात को नींद में ही मौत आ जाए, तो कम से कम आखिरी अमल क्या होगा? कुरान करीम की तिलावत। इतनी अच्छी बात है ना। चलिए चलते हैं अपनी नमाज की तरफ। हमने अपनी नमाज को देखना शुरू किया था और हम कोशिश कर रहे हैं कि नमाज को समझें, इसका तर्जुमा भी, इसकी तशरीह भी। एक बात एक जगह पे किसी ने बड़ी अच्छी लिखी, उन्होंने कहा कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो चूंकि नमाज हमें याद दिलाती है आखरत की, कि आखरत में भी मुझे अल्लाह ताला के आगे खड़े होना है, तो ऐसे ही समझें कि मेरे सामने पुल सिरात है और मैंने इस पुल सिरात से गुजरना है, और मेरे पीछे मौत का फरिश्ता है, मेरे एक तरफ जहन्नुम भड़क रही है और दूसरी तरफ जन्नत है, तो अब मैं फिर किस तरह की नमाज पढ़ूंगी? ये मेरी आखिरी नमाज है क्योंकि मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा हुआ है, तो फिर मेरी नमाज कैसी होगी? तो अपने हर तरह से हमने कोशिश करनी है, किसी के लिए कोई चीज वर्क करेगी, किसी के लिए कोई वर्क करेगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि नमाज मुसलसल एफर्ट से सही होगी, मुसलसल एफर्ट। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपको ये बता दिया तो आपकी नमाजें सारी सही हो गई, अब इसके बाद सही ही चलती रहे, ये कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है। जिस दिन आप थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो सारी नमाज में फिर वही ख्यालात, फिर वही बातें, फिर वही चीजें दोबारा शुरू हो जाएंगी। अपने आप को कोशिश के साथ इस तरफ को लेकर आना है, कोशिश के साथ इन बातों के ऊपर जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तर्जुमे हैं, जो तशरीहात हैं, जितना भी कुछ हम नमाज में पढ़ते हैं इनकी, उन उसके ऊपर फोकस जितना ज्यादा आपका होगा उतना ही ज्यादा आपकी नमाज खुशू वाली होगी, उतना ही ज्यादा आपकी नमाज में और ख्यालात नहीं आएंगे, और जितना आपका दिमाग इन आयात या इन तस्बीहात के ऊपर नहीं होगा या इन दुआओं पे नहीं होगा, तो फिर वही मशीनी नमाज होगी, फिर पता ही नहीं होगा कब शुरू की और कब खत्म कर दे। और बाज लोगों की नमाजें उनके मुंह पे देरी मारी जाती हैं, बाज नमाजों के कोई कबूलियत नहीं होती, तो डिपेंड करता है कि हमारी नमाज कैसी है, कितना ज्यादा हमने उसमें ध्यान दिया है उतने ही उसके मार्क्स होंगे, और बाज नमाजों के मार्क्स जीरो होते हैं, कुछ भी नहीं, कबूल ही नहीं हुई। अल्लाह ताला हमें नमाजों का भी शौक भी दे और हमारे नमाजों में खुशू हमें अता फरमाए, और ये सिर्फ दुआओं से नहीं होगा जब तक कि हम कोशिश मेहनत करते रहें करते रहें करते रहें, हर दफा जब खड़े हों नमाज में अल्लाह ताला के आगे तो सोच लें मेरा रब मेरे सामने है और वो मुझे देख रहा है, और बस मैंने ये आज अच्छी नमाज पढ़नी है, आज मैंने बहुत अच्छी पढ़नी है, क्या पता अगली वाली नमाज इतनी मुझे पढ़नी नसीब हो भी कि नहीं हो। जब भी मुझे किसी का एक्सीडेंट का पता चलता है, अचानक किसी के फौतगी का पता चलता है, तो एक ही बात मेरे जहन में आती है कि पता नहीं उसने अपनी आखिरी नमाज कैसी पढ़ी होगी, और मुझे फिर बहुत डर लगता है कि हमें पता ही नहीं है कौन सी नमाज के बाद दोबारा चांस ना मिले, कौन सी नमाज हो जो लास्ट वन हो। अल्लाह अकबर। तो हम देख रहे थे दुआएं जो हमने तशहुद में पढ़नी है, और उम्मीद है कि आपने उस दुआ के ऊपर तवज्जो दी होगी जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल वाली दुआ, या अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये वाली भी दुआ थी। तो जो भी आपको आसान लगे आप एक दुआ ज़रूर याद कर लें। और एक और दुआ भी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताई थी, कि उन्होंने पूछा था या रसूलल्लाह नमाज में मांगने के लिए मुझे कोई दुआ सिखाएं कि मैं यानी तहियात में दुरूद शरीफ के बाद वो दुआ मांगा करूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, यानी इतराफ़ अपने गुनाहों का सबसे पहले, ए अल्लाह मैंने अपनी जान पे बहुत जुल्म कर दिया, मैंने बहुत अपनी जान पे जुल्म कर दिया, और जुल्म भी थोड़ा नहीं कसीर जुल्म। अब वो पता है ये जान पे जुल्म करना क्या है, गुनाह, और हम सोचते हैं ना गुनाहों की पत्नी हमें सारे जो सजाएं हैं वो आखरत में मिलनी है, नहीं दुनिया में भी मिलती हैं, आप देखें कि सलफ सालेहीन में से एक ने कहा कि मैंने एक गुनाह किया तो 1 साल तक मैं कयामुल लैल से महरूम रहा, 1 साल तक, सोचें। इसी तरह एक ने कहा कि मैंने एक गुनाह किया तो कुरान को समझने से मैं महरूम हो गया। कभी ये तो नहीं होता कि हमारा दिल ही ना लगे कुरान को समझने में, या हम उसकी क्लासें छोड़ के भाग जाएं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे गुनाह की वजह से हो। इमाम शाफी फरमाते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि मुझे मेरा हाफजा कमजोर हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि गुनाह को छोड़ो, गुनाह जो है वो इल्म से भी महरूम कर देता है। और यहाँ पे देख लें, उन्होंने फरमाया कि कुरान को समझने से मैं महरूम हो गया। तो ये हम सोचते हैं ना, हमारा जब दिल करेगा हम कुरान को समझने लगेंगे, जब दिल करेगा हम क्लास ले लेंगे, और बस ये हो जाए काम तो फिर करेंगे, वो हो जाए तो फिर करेंगे, टालते रहते हैं। तो ये तो नहीं कि हमारे कोई गुनाह है जो आड़े आए में, जिसकी वजह से हम महरूम हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था, कुरान का पढ़ना एजाज है, बहुत बड़ा ऑनर है। ये ऑनर हर एक को नहीं मिलता, ये अल्लाह ताला अपने लोगों को चुनता है इसके लिए कि वो उसके कलाम को, इतने बाबरकत कलाम को जो अल्लाह ताला का कलाम है, कोई इंसान का नहीं है, उसको समझने के लिए अल्लाह ताला चूज करता है, सिलेक्शन होती है लोगों की। तो ये तो नहीं कि मेरे गुनाह ही इसमें रुकावट बने ने? इसी तरह इमाम इब्न कय्यम फरमाते हैं कि जब भी बंदा कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह के मुताबिक अल्लाह ताला उसको कोई नेमत से महरूम कर देता है, कोई नेमत उसे छीन लेता है। इसी वजह से वहशत कल्बी होती है, तो यानी दिल पे वहशत तारी रहती है, और कामों में रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं गुनाहों की वजह से। आपने वो हदीस सुनी होगी कि जो जिना, जिस कौम में जिना बहुत हो जाता है उसमें हलाकतें बहुत होती हैं, जिसमें खयानत होने लगती है, उसका ये लंबी हदीस है, उसका ये उसका लोगों को ये यानी उसकी वजह से होता है, किसी गुनाह की वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा आम हो जाती है, किसी गुनाह की वजह से कत्लो गारत होता है, किसी गुनाह की वजह से अल्लाह ताला नेमतों से और महरूम कर देता है। तो गुनाहों की ये नहूसतें दुनिया में भी होती हैं, इवन गुनाहों की वजह से, इंसानों के गुनाह की वजह से जानवरों की भी हलाकत हो जाती है, क्योंकि जानवर भी वो खामखा मारे जाते हैं। कौमे नूह और कौमे लूत पे जब अजाब आए थे तो उनके जानवर भी तो खत्म हो गए थे। तो इसलिए हम नहीं जानते कि कौन सी बात ऐसी हो जाए कि जिसकी वजह से हमारी, अल्लाह ना करे कि हमारी परेशानी आए, हमारे घरों के अंदर कोई परेशानी हो, या हमारी दिल परेशान रहे, या हमारे ऊपर कोई आफतें नाजिल हो जाएं, या हम नेकी से महरूम हो जाएं। बाज़ गुनाह ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से इंसान नेकी से भी महरूम हो जाता है। तो ये इंसानों के गुनाहों का नतीजा होता है कि वो किन किन मुसीबतों में पड़ जाता है। लिहाजा जब हम नमाज के अंदर ये कहें ना, तो वाकई सोचें कि मैंने बहुत गुनाह किए हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कथीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंत, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को कोई बख्श नहीं सकता सिवाय तेरे, यानी कोई और नहीं है जिसके पास मैं जाऊं तो मेरे गुनाहों की बख्शिश हो जाए, कोई और नहीं है जो मेरे गुनाहों को मिटा सके मेरे आमालनामे से, और इनकी नहूसत से मुझे निकाल सके। फ़ग़फिर ली मग़फिरतम मिन इंदिक, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, बख्श दे मुझे अपनी जनाब से, अपने पास से मुझे मग़फिरत अता फरमा दे। वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे, इन्नका अंतल गफूर रहीम, बेशक तू ही बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह ताला को उसके अस्माए हुस्ना, उसकी सिफात अल गफूर और अर रहीम से याद करे इंसान कि अल्लाह तू तो बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह तू तो बड़ा रहम करने वाला है। और अल्लाह ताला ने देखें अपनी रहमत को कैसे फैलाया हुआ है, कितने सारे चांसेस वो हमें देता है कि हम अपने गुनाहों को बख्शवा लें, कितने चांसेस हैं। अब कितने सारे आमाल हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं और उनमें कोई मेहनत नहीं लगती, कोई ऐसी उसके अंदर को बहुत पहाड़ ढोने नहीं है हमें, कोई हमें ऐसा कोई बड़ा, इतना बड़ा काम नहीं करना, छोटे छोटे काम है, लेकिन उन पे इतने बड़े बड़े अजर के वादे और गुनाहों की बख्शिश के वादे हैं, लेकिन हम इतने तवज्जो ही नहीं देते। मैंने आपको खाने के बाद एक दुआ बताई थी, उससे भी इंसान के गुनाह धुलते।
कपड़े पहनते हुए भी मैं आपको एक दुआ बताऊंगी कि आप वो दुआ पहन मांग लें या वो जिक्र कर लें कपड़े पहनते हुए, तो उससे भी गुनाह बख्शे जाते हैं। अब आप इफ्तार के वक्त दुआएं करें, आपकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ मिलता है। लेकिन हम इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो तो दें, रमज़ान के रोज़े हैं, कयामुल लैल है, ये सब गुनाहों की बख्शिश का सबब बन रहे हैं। तो इसलिए इंसान कोशिश करे कि मैं गुनाहों से बचूं और मैं जो पिछले हो चुके हैं उनके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करूं। तो इसमें इंसान मानता भी है कि मैंने हाँ गुनाह किया, ये नहीं कि मैंने कौन सा कोई गुनाह किया, ये नहीं है इसमें, मैंने किया है गुनाह। और दूसरी तरफ है अल्लाह, तेरे सिवा कोई माफ़ करने वाला भी नहीं, यानी मैं तो कहीं और नहीं जा सकता इन गुनाहों को लेके, तेरे पास ही मैंने आना है, तू ही मेरे गुनाहों को बख्श दे। तो ये दुआ वैसे भी मांगनी चाहिए, वैसे भी बहुत प्यारी दुआ है। और इसी तरह एक और दुआ है, अल्लाहुम्मा ग़फिर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्खरत, अल्लाह मेरे अगले पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। ये भी तशहुद में मांगने की दुआ है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। हज़रत अली बिन अबी तालिब फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ खुद मांगा करते थे, हालांकि आपको तो ज़रूरत भी नहीं थी। और मेरे अगले पिछले अल्लाह गुनाह माफ़ कर दे, व मा असरर तू व मा आलंत, और ये इतनी प्यारी दुआ है कि अल्लाह जो मैंने छुप के किए में या एलानिया सबके सामने किए या फिर छुप छुप के कहीं किए हुए तन्हाइयों में, वमा असरफ तू वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, और अल्लाह जो भी मैंने ज्यादती की और जो हद से मैं बड़ी और जो भी तू जानता है मेरे से भी ज्यादा, इसलिए कि हम अपने बहुत सारे गुनाहों को भूल ही चुके हैं, हमें याद ही नहीं कि हमने वो गुनाह किए, उन गुनाहों के ऊपर भी इस दुआ के जरिए हम माफी मांगते हैं कि अल्लाह मुझे नहीं याद है। अल्लाह अल्लाह ताला को तो नहीं भूलता ना, हमें अगर भूल गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो गुनाह ही खत्म हो गया, तो अल्लाह ताला के रजिस्टर्स में तो लिखा हुआ है। लिहाजा इंसान कहे वमा अंत आलमु बिही मिन्नी, अल्लाह जो तू जानता है मेरे से ज्यादा तुझे पता है उन गुनाहों को, अंतल मुकद्दिम व अंतल मुअख्खिर, ए अल्लाह तू ही आगे करने वाला है और तू ही पीछे करने वाला है, यानी अपनी बारगाह में चाहे तो इज्जत दे दे तो चाहे तू पीछे करके मुझे जलील कर दे। ला इलाहा इल्ला अंता है अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू ही माबूद बरहक है। तो ये बहुत ही प्यारी दोनों दुआएं बख्शिश की दुआएं, और जिसकी बख्शिश हो गई उसने सब कुछ पा लिया। देखें ये बात को सोचा करें कि गुनाह जो है ना ये इंसान को दुनिया में भी कहीं नहीं लेकर जाता, ये इंसान को दुनिया में भी रुसवा करता है और आखरत में तो गुनाहों की वजह से ही रुसवाई है। इसलिए अपने आप को हमने बचाना तो है ही, लेकिन हमने साथ अपने गुनाहों के ऊपर सच्चे दिल से तौबा करनी और गुनाहों को मामूली नहीं समझना। हम सोचते रहते ना पता नहीं गुनाह हो भी गए तो कोई बात नहीं, हमारे लिए वो इतनी बड़ी चीज नहीं होते, जबकि एक जगह में एक साहबी का कॉल पड़ रही थी तो वो फरमाने लगे कि वो अपने जमाने में कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद लोगों को देख के उनके हालात, तो वो कहने लगे कि वो गुनाह जिनको आज तुम कुछ भी नहीं समझते, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उनको इतने बड़े गुनाह समझते थे और तुम उनको कुछ भी नहीं जानते। ये वो उस जमाने की बात कर रहे हैं, और आज तो और ज्यादा हम फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, कुर्बे कयामत है, आज तो और ज्यादा ऐसे गुनाह हमारे अंदर आ चुके हैं जिनको हम गुनाह समझते ही नहीं, जिनको हम ऐसे ही समझ लेते हैं कि ये तो नॉर्म ही है क्योंकि सोसाइटी का नॉर्म बन चुका है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तमीमुद्दारी सहाबी रसूल है, वो रात को एक आयत की तिलावत कर रहे सूरह जासिया की, एक आयत है कि अल्लाह ताला ने फरमाया वो लोग जो बदअमालियां कर रहे हैं क्या वो ये समझ बैठे हैं कि हम उन्हें उनके बराबर कर देंगे जो ईमान लाके नेक काम करते हैं। कितनी बड़ी एक डांट है ना, कि यानी क्या समझा हुआ तुम लोगों ने कि तुम गुनाह करके तुम ये समझे बैठे हुए हो कि तुम्हें उस तरह से कर दिया जाएगा जैसे नेक काम करने वाले लोग होते हैं। ईमान ला के नेकियों में आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके बराबर कर देंगे। अफा नजाल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, अल्लाह ताला ने ये देखे सब जगह पता चलता है कि तुम समझते हो कि हम बराबर कर देंगे, क्या कैसे तुम ये कह सकते हो। ये वाली आयत जब उन्होंने तिलावत फरमाई थी ना, सुबह तक रोते रहे थे, इस आयत को दोहराते रहे और रोते रहे। हम अपने आप को खुशफहमियों में ना रखें, बल्कि हमेशा डरते रहें गुनाहों के वबाल से, गुनाहों की आफतों से, गुनाहों की वजह से आने वाली मुसीबतों से, और गुनाहों से नफरत करें कि गुनाह भी बुरी चीज है। ये नहीं कि हो हमें तो इस्लाम ने रोक दिया इससे, वरना तो मेरा बड़ा ही दिल करता है कि मैं भी ये करूं। जो कोई गैर मुस्लिम कर रहे हैं या जो कोई और लोग कर रहे हैं तो मेरा भी बड़ा दिल करता है, ये चीज मुझे बड़ी पसंद है, लेकिन बस मेरे से होती ही नहीं क्योंकि मैं इस्लाम में मना कर दिए गए। आप अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन कोई दिन ऐसा आ सकता है कि आप उस गुनाह में पड़ जाएं। गुनाह की नफरत जरूर दिल में होनी चाहिए कि ये गुनाह वो है जो अल्लाह की नाफरमानी का काम है, और अल्लाह की नाफरमानी के हर काम से मुझे नफरत होनी चाहिए, और वो काम जो अल्लाह ताला को पसंद है उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। तो अपनी मोहब्बतें और अपनी नफरतें देख के करें कि किस चीज़ के साथ हमें मोहब्बत होती है और किस किस चीज़ के साथ नफरत है। क्या वो वही है, अलाइन करती हैं उनके साथ जिनको अल्लाह ताला ने पसंद किया, या फिर वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने नापसंद किया, वो मेरी पसंद है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए हम। तो इसलिए अपने आप को बचाने के लिए इन गुनाहों की आफात को और इनकी नफूसत को जहन में रखें, और इन गुनाहों से नफरत अपने दिल में रखें कि ये वो गुनाह है जिनमें मैं कभी भी ना पढ़ूं। आज का जो जिक्र है ये वो जिक्र है जो भी बहुत आसान है और आप सबको आता भी है, और आप सब समझते होंगे कि ये तो छोटा सा जिक्र है, यही दोबारा बता दिया। क्योंकि अक्सर होता है ना कि हमें ये लगता है कि लो ये तो हमें पहले ही आता था, ये कौन सी इतनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। हालांकि ये इतना बड़ा जिक्र है कि इसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। एक बद्दू था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने आके कहा कि मुझे कोई खैर की बात सिखा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कहो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। उसके हाथ को पकड़ के ये फरमाया, तो बद्दू ने ये सीख लिया और उठ के चल दिया। जब कुछ दूर गया तो फिर वापस मुड़ के आया और आके कहने लगा ये जो आपने मुझे सिखाया है। उसने गौर किया ना तो कहता आपने जो मुझे सिखाया है ये तो सब अल्लाह ताला के लिए है, तो मेरे लिए फिर क्या है। आप सरासर मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया कि जब तुम कहोगे ना सुभान अल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला जवाब देगा सदकता तूने सच कहा। क्योंकि हमने कहा ना अल्लाह तू पाक है, तेरे अंदर कोई ऐब नहीं, कोई कमी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। जब तुम कहोगे ना अल्हम्दुलिल्लाह तो अल्लाह ताला फरमाएगा सदकता तूने सच कहा। जब तुम कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह तो अल्लाह ताला जवाब देगा सदकता तूने सच कहा। और जब तुम कहोगे अल्लाह अकबर तो अल्लाह ताला फरमाएगा सदकता तूने सच कहा। यानी जब हम ये कलिमात कहते हैं ना, ये तो वैसे ही इतनी फजीलत वाले कलिमात है, अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत महबूब थे, और इनसे गुनाह भी झड़ते हैं इंसान के। लेकिन जब इंसान ये कहता है तो अल्लाह ताला जवाब देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम कहना, फिर या अब ये तुम्हारी बात आ गई, फिर तुम कहना अल्लाहुम्मग़फ़िर अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो अल्लाह ताला फरमाएगा कद फालतू मैंने कर दिया, मैंने माफ कर दिया तुझे, डन। फिर तुम कहना अल्लाहुम्मरहमनी अल्लाह मुझे मेरे ऊपर रहम भी कर देना, अल्लाह ताला आगे से जवाब देता है कद फालतू मैंने रहम कर दिया, फिर तुम कहना अल्लाहुम्मा रज़ुकनी अल्लाह ताला फरमाएगा कद फालतू मैंने कर दिया, मैंने तुझे रिस्क दे दिया, मैंने तुझ पे रहम कर दिया, मैंने तुझे माफ कर दिया। तो आप वो वाले अज़कार को यानी अपने टॉप ऑफ द लिस्ट रखें जिनके बाद दुआएं कबूल होती हैं, और फौरन उनके बाद दुआ कर लिया करें।
यानी अब एक अपॉर्चुनिटी खुली है, एक डोर खुला है, आप फौरन दुआ कर लें। जब आप को सबको ही आता है सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो इसके बाद फौरन कोई ना कोई अपनी दुआ मांग लिया करें। ये भी कलेमात वो हैं जो दुआओं की कबूलियत का सबब बनते हैं, और ये वो तस्बीहात हैं जिनकी एक बिन बिनाहट है। ये तस्बीहात ऊपर जाती हैं और अल्लाह ताला के अर्श के गिर्द घूमती हैं, और हदीस में आता है इनकी बिन बिनाहट होती है जैसे मक्खियों की बिन बिनाहट। ये वहां पे बंदे की याद अल्लाह ताला को कराती हैं। आपका जिक्र इतनी ऊपर होता है, इतनी ऊपर के अर्श के गिर्द ये आपका जिक्र घूमता है और अल्लाह ताला को आपकी याद कराता रहता है कि एक बंदा है अल्लाह, तेरा एक बंदा है ये जिक्र कर रहा है। अल्लाह ताला हमें उनमें शामिल करे। अल्लाह अकबर, ये कितनी बड़ी शहादत है, ये कितनी बड़ी शहादत है अगर हमारा जिक्र इतनी ऊपर पहुंच जाए कि वो अर्श के गिर्द जाके चक्कर लगाए और अल्लाह ताला के आगे हमारी याद कराता रहे। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे इतनी कि हम ये जिक्र इतनी मोहब्बत और इतने खुशू और इतनी प्यार से कर सके, इतने इतना दिल लगा के कर सके। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं करें, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि शौक के साथ करें कि मैं क्या कह रही हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि इसमें मजा आने लगे। अल्लाह ताला ये जिक्र की भी जो लज्जत है ना, ये भी अता फरमाता है लोगों को। जैसे असलाफ में से किसी ने कहा, ये मुमकिन ही नहीं है कि तुम अल्लाह का जिक्र करो और तुम्हें जिक्र का मजा ना वो चखाए। तो जिक्र का भी एक मजा होता है, जब हम बहुत ज्यादा जिक्र करने लगेंगे फिर हमें ये मजा आने लगेगा। अल्लाह ताला हमें ये मजा चखाए कि हमें भी ऐसा मजा आने लगे कि हमारा हर वक्त दिल करे कि हम अल्लाह ताला का ही जिक्र करते रहे। अल्लाहुम्मा इन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ठीक है, ये भी दुआ मांगनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारी मदद करे उसका जिक्र करने पे, अच्छी इबादत करने पे, उसका शुक्र अदा करने पे। अल्लाह ताला हम सबसे राजी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।